वर्णीय श्री गौरांग महाप्रभू भौतिक अस्तित्वात वावरणाऱ्या सर्वात दुःख हरण करतात, परमार्थासाठी लोकांसाठी ते अंतिम ध्येय आहेत. मधुकर ज्याप्रमाणे मधासाठी आतुर असतो, त्याप्रमाणे ते कृष्ण प्रेमाच्या मधुर मतासाठी आतुर होण्यास सर्वांना प्रवृत्त करतात. या भौतिक जगतातील भवताप ते हरण करतात. अशा सत्यशोध गौरवर्णीय श्री गौरांग महाप्रभूंच्या चरणी मी वंदन करतो. ते सर्वांना निज भक्तीसाठी प्रवृत्त करतात. त्यांच्या प्रिय सेवकांना ते अतिशय आकर्षक आहेत. नाट्यमय नृत्याने ते नागरराजाचे गुण प्रदर्शित करतात. त्यांना पाहिल्यानंतर ग्रामातील सर्व सुंदर युवतींचे मन नृत्य करू लागते. अशा सत्यशोध गौरवर्णीय श्री गौरांग महाप्रभूंच्या चरणी मी वंदन करतो. सुमधुर आवाजात गायन करीत ते सुंदर करताल वाजवितात आणि त्यावेळी हळुवार आवाजात वीणा वाजवली जाते. निज भक्त गुणांनी आवृत्त असलेले नाट्यमय नृत्य करण्यासाठी ते सर्वांना प्रवृत्त करतात. अशा सत्यशोध गौरवर्णीय श्री गौरांग महाप्रभूंच्या चरणी मी वंदन करतो. कलियुगाचा युगधर्म असलेले हरिनाम संकीर्तन आंदोलन ते स्वतः बरोबर घेऊन आले आहेत. नंद महाराजांचे सुपुत्र श्री कृष्णच पुन्हा अवतरित झाले आहेत. ते या धरणीवरील अतिशय तेजस्वी असे अलंकार आहेत. त्यांनी अंगीकृत केलेल्या प्रचाराचा भाव हे या जन्ममृत्यूच्या चक्रासाठी अतिशय उचित औषध आहे. स्वतःच्या श्री कृष्णांच्या रूपावर त्यांची चेतना सतत ध्यानात असते. त्यांचे स्वधाम ते त्यांच्याबरोबर घेऊन आले आहेत. अशा सत्यशोध गौरवर्णीय श्री गौरांग महाप्रभूंच्या चरणी मी वंदन करतो. त्यांचे नेत्र, चरण आणि वस्त्रांचा रंग हा उगवत्या सूर्याच्या अरुण रंगालाही लाजवेल असा आहे. स्वतःचे नाम घेताना त्यांचा आवाज स्खलित होतो. संपूर्ण विश्वातील जीवनात ते मधुर रस जागृत करतात. अशा सत्यशोध गौरवर्णीय श्री गौरांग महाप्रभूंच्या चरणी मी वंदन करतो.
नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरम् नवहास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरम् नवहास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नव प्रेमवसम् नवप्रेमयुतं नव नीतशुचं नव वेशकृतं नव प्रेमरसम् Thank you. नवधा विलसत् शुभ प्रेममयं प्रणमामि शशिसुत गौरवरम्। नवधा विलसत् शुभ प्रेममयं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। हरि भक्ति परम हरि नाम धरम कर जाप्य करम हरि नाम परम। हरि भक्ति परम हरि नाम धरम कर जाप्य करम हरि नाम परम। नयने सततं प्रणय श्रुधरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। नयने सततं प्रणय श्रुधरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिम्। सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिम्। नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। निज भक्तिकरं प्रियचारुतरं नट नर्तन नागर राजकुलम्। निज भक्तिकरं प्रियचारुतरं नट नर्तन नागर राजकुलम्। कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। करतालवलम कलकंठरवम मृदुवाद्य सुवीणकया मधुरम। करतालवलम कलकंठरवम मृदुवाद्य सुवीणिकया मधुरम। निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। युग धर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणी सुचित्रं भव भावोचितम्। युग धर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणी सुचित्रं भव भावोचितम्। तनु ध्यान चितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वक नामधरम्। अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वक नामधरम्। कुरुते सुरसां जगत जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। कुरुते सुरसां जगत जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। नवगौरवरम् नवपुष्पशरम् नवभावधरम् नवलास्यपरम्। नवगौरवरम् नवपुष्पशरम् नवभावधरम् नवलास्यपरम्। नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। गौरवरं प्रणमामि शशिसुत गौरवरं गौरवरं प्रणमामि शशिसुत गौरवरं गौरवरं प्रणमामि शशिसुत गौरवरं गौरवरं प्रणमामि शशिसुत गौरवरं
नाम संकीर्तन की शिशि निताल गौर चंद्र की शिल प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरांदस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्री रूपां सागर जातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर
सभी भक्तों का स्वागत है। आज से जो हम गौर कथा प्रारंभ कर रहे हैं, इस वर्ष गौर पूर्णिमा महोत्सव जो कि कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, आने वाले शुक्रवार को 21 तारीख को हम गौर पूर्णिमा का महोत्सव यहाँ पर मनाएंगे, जिसके उपलक्ष्य में हम गौर कथा आज से प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो भगवान का मुख्य प्रयोजन होता है कि अपने अवतार के साथ भगवान अपनी लीला कथा छोड़कर जाते हैं हमारे लिए, ताकि भगवान अंतर्धान होने के पश्चात भगवान की कथाओं के द्वारा हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकें। और भगवान के इतने सारे अवतार, और इन सारे अवतारों में भगवान श्री कृष्ण ये हैं सर्वोपरि, जो कि केवल कोई अवतार नहीं बल्कि स्वयं अवतारी हैं भगवान श्री कृष्ण। और वही भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला इस भौतिक संसार में करने के लिए आते हैं, तो क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए उनकी कई सारी ऐसी लीलाएं हैं जो हमारी कल्पना के बाहर है। जैसे कि प्रभु श्री राम, इनकी सारी जो लीला है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाते हुए है, और इसलिए प्रभु श्री राम इनकी जो लीलाएं हैं ये बहुत ही सरल हैं समझने में। परंतु भगवान श्री कृष्ण इनकी बहुत सी लीलाएं हैं जो हम प्रयास भी करें तो पूर्ण प्रकार समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण वो इस कलयुग में अवतार लेने का सोचते हैं तो बहुत सोच विचार कर उन्हें आना होता है। क्योंकि यदि द्वापर युग में ही स्थिति ऐसी है कि दुर्योधन जैसे द्वापर युग में ही उन्हें नहीं पहचान पा रहे, तो वही दुर्योधन जो मूर्तिमान कली इस कलयुग में और हम सब कलयुग के वासी कैसे उन भगवान को समझ पाएंगे। तो इसलिए वही भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में एक ऐसे रूप में आते हैं जो कि हम सर्वसाधारण तरीके से समझ पाए, और न केवल समझ पाए बल्कि साक्षात्कार कर पाए और उनकी प्रेरणा द्वारा उनका अनुकरण भी हम करें, तो हम हमारे इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिद्ध कर सकेंगे। और वो हैं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए 500 वर्ष पहले। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि हालांकि हैं वो भगवान श्री कृष्ण, परंतु उनकी छवि भगवान श्री कृष्ण से थोड़ा अलग है। भगवान श्री कृष्ण हैं श्याम वर्ण के और श्री चैतन्य महाप्रभु हैं गौर वर्ण। इसलिए एक और नाम चैतन्य महाप्रभु का है, गौरांग महाप्रभु। और भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, भगवान श्री कृष्ण को दर्शाया गया है इनके चित्रों द्वारा, और वहां पर वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में अवतरित हुए एक सन्यासी के रूप में। यदि यहां पर भगवान श्री कृष्ण को देखो और वहां पर वही भगवान श्री कृष्ण है इनको देखो, तो बहुत अंतर दिखता है कि यहां पर एक पूर्ण पुरुषोत्तम एक ग्वाले के रूप में और इतने सुंदर आभूषण और इतने सुंदर केश, परंतु वही सुंदरता उन्हीं भगवान की उनके सन्यास के रूप में। और उन्होंने सन्यास लिया किस लिए? ताकि हम सबको इन भगवान श्री कृष्ण या उन्हीं के शरणागत हमें बना पाए। तो बहुत ही विशेष है श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार और गौर कथा। जैसे कि कृष्ण कथा है वैसे है गौर कथा, और बहुत सरल है गौर कथा हमें समझने के लिए और हमारे जीवन में उतारने के लिए। तो इस वर्ष हम चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला अध्याय 17 से चर्चा करेंगे। हालांकि यह अध्याय तो बहुत बड़ा है, जितना हमसे हो पाए उतनी चर्चा हम इस वर्ष करेंगे इस अध्याय से। और बहुत ही सुंदर इस अध्याय की शुरुआत है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की ब्रजधाम यात्रा, ये जो ये सुंदर बड़ा चित्र आप देख रहे हो पहला वाला, जिसमें चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में हैं, वृंदावन के वन में, और सभी जैसे यहां पर भगवान श्री कृष्ण वो सभी प्राणियों और वृंदावन के वासियों से घिरे हुए हैं, वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए तो वैसा ही कुछ उन्हें अनुभव हुआ। तो विशेष रूप से हमने ये अध्याय को लिया है क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की ब्रजधाम यात्रा, जो हम साधना भक्ति में लगे हैं, हमारे प्रयास के समान है, या हमारे प्रयास को सुदृढ़ करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने यात्रा द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि हम सब जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगने का उद्देश्य क्या है? ब्रज धाम प्राप्त करना। श्री गोलोक वृंदावन कोई जाना चाहता है? तो गोलोक वृंदावन वो कोई साधारण जगह नहीं है कि हम बैग पैक किया और एक दिन उठे चले। कोई पूछ रहा है कहां जा रहे हैं? गोलोक वृंदावन जा रहे हैं। इतना आसान नहीं है गोलोक वृंदावन जाना। कुछ दिन मैं बंबई था और बंबई जाने का कारण था कि इस वर्ष हमें प्रचार हेतु विदेश जाना है। तो मई जून के कुछ महीने में हम बाहर रहेंगे, वहां प्रचार हेतु जाना है। तो यहां पर तो हम चर्चा कर रहे हैं गोलोक वृंदावन जाने की। यहां भारत से बाहर निकलकर यदि विदेश किसी दूसरे देश में यदि जाने का प्रयास करो तो इतनी कठिनाइयां होती हैं कि हम ये अलग अलग देशों के वीजा ऑफिस में गए बंबई में जो हैं। तो जर्मनी का एक वीजा ऑफिस है वहां पर काउंसुलेट। तो वहां पर सबसे पहले तो आपको 2 घंटा बाहर बिल्डिंग के बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। बिल्डिंग में नहीं घुसने देते 2 घंटे तक तो। और फिर इतने सारे कागजात इकट्ठा करना पड़ता है। और ये सारे क्यों? कौन आपको वहां से बुला रहा है? आप भारत में क्या करते हैं और कितना पैसा कमाते हैं? वहां पर क्या करेंगे, कितने दिन रहेंगे, कब पहुंचेंगे, कब जाएंगे? वहां पर सेटल तो नहीं होने वाले आप? इतने सारे प्रश्न पूछे जाते और डर बना है कि हमारे देश में कोई दूसरा आकर बस न जाए। जैसे कि कोई खूंखार पशु जाना चाहते हैं वहां पर, अरे उन्हीं के योनि के उन्हीं की जाति के मनुष्य जाना चाहते हैं। परंतु यही श्रील प्रभुपाद बोला करते थे कि ये जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले होते हैं ये भोगते हुए कुत्तों के समान। जैसे किसी गली में जाओ, किसी कुत्ते की गली में, तो भोंकना शुरू करता है। और हालांकि वो भी वही प्रश्न पूछ रहा है जैसे कि ये लोग पूछ रहे हैं। खाली अंतर ये है कि ये भोंकते दिखते नहीं, परंतु प्रश्न वही है। जैसे कुत्ता सबसे पहले थोड़ा धीरे से भोंकेगा, क्या है, भाव भाव। फिर थोड़ा धीरे धीरे उसका वॉल्यूम बढ़ाएगा वो, कि जब आप और अंदर उसकी गली में जाने का प्रयास करेंगे तो उसका भौंकना और बढ़ जाता है उसका वॉल्यूम। कि मेरी गली है, देखते नहीं हूं मैं यहां का राजा हूं और यहां घुसने का प्रयास कर रहे हो। और फिर ये सारे जो प्रश्न ये लोग पूछते हैं वही वो कुत्ते भी, खाली उनकी भाषा अलग है। तो यही हम सोच रहे थे कि एक देश से दूसरे देश इस पृथ्वी पर, यहां पर घूमने के लिए एक देश से दूसरे देश, अरे वो तो दूर की बात है। बंबई से नासिक आने के लिए बीच में वो टोल भरना पड़ता है, नहीं तो अनुमति नहीं। यहां से वहां जाओ तो टोल भरो, पैसा भरो, नहीं तो अनुमति नहीं। तो सोचिए गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन क्या इतनी आसानी से हम जा पाएंगे? वो वीजा ऑफिस में बैठकर मैं यही सोच रहा था कि ये एक जो पूरे तमोगुण में ये देश है, ऐसे तमोगुणी देश में जाने के लिए इतनी योग्यता होनी चाहिए। तो सोचिए जो सच्चिदानंद धाम है भगवान का, उस धाम में पहुंचने के लिए क्या कोई योग्यता नहीं चाहिए? वो इंटरव्यू कैसा रहेगा? जब भगवत धाम जाने के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहां पर तो कोई झुठला कर भी जा सकता है कि गलत कागजात, बहुत लोग जाते गलत पासपोर्ट जाली कागजात ये सब दिखाकर पहुंच जाते हैं उधर, परंतु भगवत धाम जाने के लिए कोई जाली काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो हृदय में है वो साफ साफ दिख रहा है। तो भगवान सब अंदर से जानते हैं कि इसकी कौन कौन सी इच्छाएं अब तक हैं, तो भगवान पूछ लेंगे वो जो अंदर वो वाली इच्छा साइड में हृदय के उस कोने में है उसका क्या, उसको हम कहां छिपाएंगे, कौन सी भौतिक इच्छा को हम कहां किस हद तक छिपा पाएंगे, और वो भी भगवान से। तो वहां पर पूर्ण शुद्ध जब तक नहीं होंगे तब तक वो स्टैंप नहीं मिलेगा। और जैसे कि इसमें हमें बताया गया था कि ये लोग वीजा स्टैंप भी कर दे यहां से, परंतु वो लोग वहां पर भी भेज सकते हैं वापस, एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट कर सकते हैं। उन्हें लगा कि ये योग्य नहीं है, ये कुछ गड़बड़ व्यक्ति लगता है, तो वहां से भी भेज सकते हैं वो लोग। तो अगर कोई यहां पर शुद्ध भक्त भी बन जाए तो यहां से गोलोक वृंदावन की यात्रा वो कहां से होती है आप जानते हैं, अलग अलग स्वर्ग लोक से घुमा कर ले जाते हैं वो लोग। बीच में सभी स्वर्ग लोक का एक एक सैंपल दिखाते हुए ले जाते हैं, और वो क्यों, ये चेक करने के लिए यदि किसी एक स्वर्ग लोक या किसी एक स्वर्ग लोक में जो ऐशो आराम है उसके प्रति यदि थोड़ी कण मात्रा भी उसे इच्छा हो गई, यदि उसने स्वर्ग लोक की तरफ ऐसे भी देख लिया उधर ही उतार देंगे, वैकुंठ विमान से वहीं पे सारे कैमरा बाहर से और अंदर से फिट रहते हैं वैकुंठ विमान में, केवल बाहर से नहीं। तो स्वर्ग लोक से विमान ले जाते हैं और वहां पर यदि वो कहते हैं ना अंग्रेजी में साइड लॉन्ग ग्लांस, यदि साइड लॉन्ग ग्लांस भी दे दिया किसी एक स्वर्ग के तरफ कि इतना सुना था इंद्रपुरी, थोड़ा जाते जाते देख लेते हैं कि इंद्रलोक कैसा है और इंद्रलोक में क्या क्या है, तो इतना सा देखने मात्र से वहीं पर जाओ। और इसलिए कई बार वैकुंठ विमान यहां से निकलता है वहां पर खाली पहुंचता है, क्योंकि उसमें से बहुत से इच्छा कर लेते हैं बीच में और फिर उतरना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है गोलोक वृंदावन इस धाम को पहुंचना, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो कि वहां के मेन अधिष्ठाता देव, हालांकि वो तो सबके हैं परंतु विशेष रूप से गोलोक वृंदावन के, वो अवतरित होकर हमें सिखाते हैं कि ब्रज धाम पहुंचना है तो कैसे उस यात्रा को प्रारंभ करना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में भाग लेने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु अब उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब जगन्नाथपुरी से श्री वृंदावन धाम प्रस्थान करेंगे, और उनके मन में इतने समय से ये उत्कंठा थी कब वो समय आएगा जब वो श्री वृंदावन धाम की तरफ जाएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये इच्छा व्यक्त करते हैं तो हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मोर मन वृंदावन, कि मेरा जो मन है वही वृंदावन है, तो बहुत से चैतन्य महाप्रभु के पार्षद वो नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़कर कहीं पर भी जाएं। वो हर समय चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु उनके साथ ही रहें 24 घंटे। और वो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जब भी चैतन्य महाप्रभु, जैसे हमने पिछले वर्ष चर्चा की, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले, तो उस समय भी सारे पार्षद चैतन्य महाप्रभु के वो एकत्रित हुए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो आपको कहीं पर जाने की क्या आवश्यकता है। यदि आपको किसी का उद्धार करना है तो केवल सोचने मात्र से उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। परंतु चैतन्य महाप्रभु किसके विषय में सोच रहे थे? हमारे सबके विषय में, कि यदि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा नहीं करते, यदि चैतन्य महाप्रभु ये ब्रज धाम की यात्रा न करते तो हमारे लिए चर्चा करने के लिए कोई विषय नहीं होता। तो गौर कथा क्या होती? एक मिनट की। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा सबका उद्धार हो गया, हरे कृष्णा महाप्रसाद है गोविंदे, ये हो गई गौर कथा। हालांकि वो सक्षम है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो क्या कुछ नहीं कर सकते, केवल सोचने मात्र से वो सबका उद्धार कर सकते हैं, परंतु वो इस भौतिक संसार में आकर इन जगहों पर जाकर अपनी लीला विशेष रूप से हमें देने के लिए करते हैं, ताकि हमारे लिए चर्चा का कोई विषय हो। नहीं तो क्या होगा, विषय के प्रति आकर्षण बना रहेगा, नहीं तो यहां पर आज हम बैठकर किसकी चर्चा करते? कोई फिल्म स्टारों की, कोई क्रिकेट स्टारों की, इन सब सितारों की, टूटते हुए सितारे, शूटिंग स्टार। परंतु यहां पर चैतन्य महाप्रभु केवल ऐसा नहीं, लीला करने हैं तो चलो चलते हैं कहीं दक्षिण भारत निकल पड़े। चैतन्य महाप्रभु जहां कहीं पर भी जाते थे उनका प्रयोजन होता था। क्या प्रयोजन? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु सोचे कि गर्मियों की छुट्टियां आ रही है, चलो थोड़ा आउटिंग के लिए साउथ इंडिया चलते हैं, ऊटी उधर है साउथ इंडिया, या पिछले साल ऊटी हो गया, इस साल शिमला चलते हैं चलो। तो चैतन्य महाप्रभु कोई वेकेशन के लिए नहीं आए थे, ऑन ड्यूटी चैतन्य महाप्रभु। देखिए, सन्यास लेना पड़ा उन्हें हमारे लिए, हम तक पहुंचने के लिए। तो अपनी ब्रज धाम यात्रा में चैतन्य महाप्रभु किन किन पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं, हम उन पर ध्यान देंगे। सबसे पहले वैष्णवों का आशीर्वाद कि ब्रजधाम यात्रा यदि हमें भी हमारे जीवन में प्रारंभ करनी है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि वैष्णवों का आशीर्वाद होना कितना आवश्यक है। उसके पश्चात वृंदावन का अनुभव तभी हो पाएगा जब अंतर निरीक्षण द्वारा हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने अनर्थों को दूर करेंगे। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण द्वारा ये सिखाया कि वृंदावन का अनुभव अंतर निरीक्षण द्वारा ही संभव है। ब्रजधाम यात्रा की प्रसन्नता छिपी है वैष्णवों की प्रसन्नता में। तो कैसे? चैतन्य महाप्रभु ने यात्रा प्रारंभ करने से पहले सभी वैष्णवों को प्रसन्न किया और उनका आशीर्वाद अनुमति लेने के पश्चात वो अपनी यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। भगवान के पार्षद भगवान को निर्देश दे रहे हैं, परंतु सेवा हेतु। हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जब वो अनुमति लेने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर ये पार्षद चैतन्य महाप्रभु के सेवक वो चैतन्य महाप्रभु को निर्देश देते हैं कि आप कैसे जाओ, किस हाल में जाओ, कहां से जाओ। तो वो निर्देश दे रहे हैं परंतु सेवा हेतु। तो ये एक गुण हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हालांकि वो स्वयं भगवान परंतु एक सेवक के रूप में अपने पार्षदों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान जाने से पहले किसी भी भक्त को अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे और अंततः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक कौन बन सकता है जो कि चैतन्य महाप्रभु के साथ वृंदावन जा सकता है। तो एक भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ वृंदावन गए तो यदि हम सबको चैतन्य महाप्रभु के साथ वृंदावन जाना है तो कौन सी योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने उस पार्षद के द्वारा दर्शाया। तो चैतन्य महाप्रभु की जो वृंदावन यात्रा है मध्य लीला और 17 अध्याय से प्रारंभ होती है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के पश्चात उन्होंने अपनी ये इच्छा व्यक्त की श्री वृंदावन धाम जाने की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के निकट आते हैं और वो कहते हैं मोर सहाय कर यदि तुमी दुई जन तबे आमी आना देखी श्री वृंदावन। श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से अपने पार्षदों में से दो विशेष पार्षदों को बुलाते हैं और वो हैं श्रीमान स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्रीमान रामानंद राय। ये सबसे निकट चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, इनको बुलाकर श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, मोर सहाय कर यदि तुमी दुई जन, कि तुम दो जन स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। सहायता मांग रहे हैं। सोचिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक संसार में आकर उनके पार्षद उनके सेवक उनके भक्तों से सहायता मांग रहे हैं। मोर सहाय कर यदि, और सहायता किस हेतु, तबे आमी आना देखी श्री वृंदावन, कि तुम दोनों की सहायता से मैं श्री वृंदावन धाम का दर्शन कर पाऊंगा। अब सोचिए ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि वृंदावन चंद्र हैं, जो कि ब्रजराज हैं, ब्रजनाथ हैं, वो ब्रजनाथ वो ब्रजराज वो ब्रजचंद्र वो सहायता मांग रहे हैं वृंदावन में जाने की। कि ये ऐसा हुआ मानो किसी को अपने घर जाना है, किसी को अपने घर जाना है तो घर के बाहर जो वॉचमैन खड़ा है उसको जाकर पूछता है, अंदर आने की अनुमति है? अरे भाई वो वॉचमैन क्या कहेगा, अरे मालिक आप ही का तो बंगला है, मैं आपकी अनुमति से यहां बाहर खड़ा हूं। और मालिक उस संतरी को पूछ रहे हैं कि क्या अंदर आने की अनुमति है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में ऐसी नम्रता दिखा रहे हैं कि अपने ही धाम श्री वृंदावन धाम में जाने के लिए वो अनुमति मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम दोनों की सहायता के बिना मैं नहीं जा सकता। तो यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु हमें क्या सिखा रहे हैं कि यदि हमें जब भी श्री वृंदावन धाम जाना है तो पहले हमें वरिष्ठ वैष्णवों का आशीर्वाद लेना चाहिए। यहां तक कहा गया है कि वरिष्ठ वैष्णवों के साथ जाना चाहिए, नहीं तो श्री वृंदावन धाम हमें भ्रमित कर देगा। और विशेष रूप से यदि हमें श्री गोलोक वृंदावन धाम की यात्रा वहां पर जाना है, यदि वो हमारा गंतव्य स्थान बनाना है श्री गोलोक वृंदावन धाम, तो हमारे पूरे जीवन भर हमें करना क्या है, केवल वैष्णवों का आशीर्वाद और अनुमति। क्योंकि जब तक वैष्णवों से एनओसी नहीं मिलेगा, वो दिखाना पड़ेगा वहां पर अंदर घुसने से पहले कि यहां पर जितने सारे वैष्णव, विशेष रूप से श्री गुरु, विशेष रूप से श्री गुरु और बाकी साधु, इन सब की अनुमति और आशीर्वाद मिला कि नहीं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया कितने समय में, 6 महीने में। तो सोचिए 6 महीने में भगवत धाम प्राप्त कर लिया ध्रुव महाराज ने, जो केवल 5 वर्ष के थे। परंतु यदि आप ध्रुव महाराज के प्रसंग को पढ़ो चतुर्थ स्कंद में, तो ध्रुव महाराज वो अपने आप अकेले भगवत धाम प्राप्त नहीं कर पाए। ध्रुव महाराज ने भगवत धाम प्राप्त किया बहुत से कारणों के वजह से और बहुत से अलग अलग व्यक्तियों के वजह से। ध्रुव महाराज ने भगवत धाम प्राप्त किया उनकी जो सौतेली मां सुरुचि के कारण, उनके पिता उत्तानपाद के कारण, उनकी मां सुनीति के कारण और नारद मुनि के कारण। तो यदि हम देखें कि ध्रुव महाराज को भगवत धाम पहुंचाने के पीछे कौन कौन से भक्त थे, तो इतने सारे भक्त, और वो भी ये लोग साधारण नहीं थे। वो सौतेली मां ध्रुव महाराज की सुरुचि, हालांकि सुरुचि ने अपमान किया ध्रुव महाराज का, परंतु उस अपमान में ध्रुव महाराज के भगवत धाम जाने की शुरुआत थी। यदि वो अपमान नहीं हुआ होता, मान लो कि ध्रुव महाराज की कथा ऐसी हुई होती कि ध्रुव महाराज गए उस दिन जब महाराज उत्तानपाद वो अपने सिंहासन पर बैठे, अपने दूसरे पुत्र को अपने गोद में रखे हुए थे उत्तम, तो ध्रुव महाराज ने इच्छा की, पिताजी से पूछा, पापा पापा मैं भी बैठना चाहूंगा। तो यदि उत्तानपाद ध्रुव महाराज को तुरंत उठाकर अपने गोद में रख लेते, हालांकि रख लिया था उन्होंने, और सुरुचि वहां पर आकर कहती कि ध्रुव तुम कितने सुशील बालक हो और तुम ही योग्य हो तुम्हारे पिता के गोद पर बैठने के, तो यदि कथा ऐसी होती तो क्या होता, ध्रुव महाराज एकदम प्रसन्नचित होकर सुरुचि को कहते तो फोटो खींचो एक हम दोनों को फैमिली एल्बम में डाल देंगे। बस फिर ध्रुव महाराज खुशी खुशी वापस सुनीति के पास जाते और कहते कि आज जो दूसरी माँ है ना उन्होंने बहुत अच्छे से व्यवहार किया और मुझे पिताजी के गोद में बिठाया, फोटो खींचा, चॉकलेट दी, ये सब यदि कहते तो ध्रुव महाराज की कथा कहां तक पहुंचती। हो गया, ध्रुव महाराज बड़े हुए, सिंहासन उन्होंने लिया और फिर वही एक राजा का जो जीवन वैसा जीवन उन्होंने बिताया होगा। परंतु ध्रुव महाराज को गोद में बैठने की अनुमति नहीं, उठाया नीचे, पटका सुरुचि ने और अपमानजनक शब्द कहे, ऐसे वाग्बाण मारे सुरुचि ने कि मूर्ख उद्दंड बालक, तेरी हिम्मत ऐसी कि तू ये उत्तानपा जो कि सबसे प्रिय है मुझे और मैं सबसे प्रिय हूं इन्हें, हिम्मत कि तू मेरे कोख से जन्मा नहीं और बैठने चला है अपनी औकात देखी। ये सारे शब्द थे सुरुचि के ध्रुव महाराज के प्रति। और ध्रुव महाराज केवल 5 वर्ष के, तो ज्यादातर 5 वर्ष का जो बालक होता है वो ये सब डांट फटकार सुनकर भूल भी जाता है, रो देगा, रोने के पश्चात भूल जाएगा और फिर खेलकूद में लग जाएगा। ध्रुव महाराज भूले नहीं वो बिल्कुल, जब तक कि ध्रुव महाराज वो शुद्ध नहीं हुए भक्ति के द्वारा तब तक भूले नहीं थे। वो अपनी तपस्या में भी वो क्रोध में प्रतिशोध में वो अपनी तपस्या कर रहे थे। तो सुरुचि वो सहायक बनी और सुरुचि ने कह भी दिया कि हे ध्रुव मैं बताती हूं कि तुम्हारे पिता की गोद में बैठने के योग्य कैसे बनोगे और कब बनोगे। जब तुम मेरी कोख से जन्मोगे तब जाकर, और मेरी कोख से तुम अगले जन्म में ही जन्म सकते हो, इसलिए इस जन्म में तुम वो भगवान विष्णु की भक्ति करो, उनकी कृपा से तुम हो सकता है कि मेरी कोख से जन्मो और फिर ये सब कुछ संभव है तुम्हारे लिए। तो यहां पर सुरुचि सुनीति से पहले ध्रुव महाराज की पथ प्रदर्शक गुरु बनी। और फिर ध्रुव महाराज जब क्रोध अवस्था में गए अपनी मां के पास तो सुनीति ने भी यही कहा, तो दूसरी गुरु बनी सुनीति। और इन दोनों के बीच में उत्तानपाद महाराज, कि यदि उत्तानपाद महाराज सुरुचि को वहां थप्पड़ मार कर बोलते चुप, अरे ये मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र मेरे गोद में बैठने के लिए इतना उत्कंठित है, तो अरे पुत्र पिता के तो गोद में बैठेगा और तुम कौन हो बीच में बोलने वाली। उत्तानपाद महाराज कह सकते थे परंतु कहा नहीं उन्होंने। तो महाराज उत्तानपाद यदि कुछ कह देते, क्योंकि ध्रुव महाराज ने जब ये सारी अपमानजनक बातें सुनी तो ध्रुव महाराज अपने पिता की तरफ देख रहे थे, आप कुछ नहीं कहेंगे क्या, आप भी इसके पक्ष में हो। महाराज उत्तानपाद वो सुरुचि से इतना प्रेम करते थे कि वहां पर उनका पक्षपात दिख गया। हालांकि सुनी थी वो भी पटरानी थी, वो भी एक योग्य रानी थी महाराज उत्तानपाद की, परंतु महाराज उत्तानपाद ज्यादा प्रेम करते थे सुरुचि से, तो उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला, शांत रहे वो, कुछ नहीं बोले। होता है कई बार कि जिससे प्रेम होता है यदि उसके विरुद्ध जब कुछ बोलना होता है तो हम शांत हो जाते हैं, अब क्या कहें। तो यहां पर जब महाराज उत्तानपाद शांत रहे और ध्रुव महाराज वो देख रहे हैं अपने पिता की तरफ, तो उन्हें लग गया कि ये जो मेरे पिता हैं ये भी सहमत हैं शायद सुरुचि से। तो महाराज उत्तानपाद भी कारण बने ध्रुव महाराज के वन गमन का। वो भी कौन सा वन? वृंदावन। तो ये तीन तो हो गए और रास्ते में मिले नारद मुनि। तो नारद मुनि ने जो अंतिम शिक्षा दी ध्रुव महाराज को कि जो अंतिम पथ दिखाने वाले वो थे नारद मुनि। तो ध्रुव महाराज के जीवन में यदि हम देखें कि ध्रुव महाराज जब वो भगवत धाम जा रहे थे, वैकुंठ विमान पर चढ़ रहे थे, तो मृत्यु मूर्तिमान मूर्तिमान मृत्यु के सर पर अपना पग रख कर वो वैकुंठ विमान को चढ़ रहे थे। सोचिए, ये ध्रुव महाराज ने हासिल कर लिया 6 महीने में। तो जाने से पहले ध्रुव महाराज पूछते हैं कि भाई मेरी जो माता सुनीति, जिन्होंने मुझे भगवत भक्ति की राह दिखाई, उनके क्या? तो वो ध्रुव महाराज से पहले जा रही थी और ध्रुव महाराज से संबंधित सभी भगवत धाम गए। नारद मुनि तो खैर वो भगवत धाम के पार्षद हैं ही, यहां तक कि सुरुचि और उत्तानपाद ये भी। तो ध्रुव महाराज के उदाहरण से हमें क्या समझ में आता है कि भगवत धाम कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना वैष्णवों की कृपा से भगवत धाम पहुंचा है। इसके विरुद्ध एक और उदाहरण श्रीमद् भागवत में है, जो बिना वैष्णवों की कृपा के भगवत धाम पहुंच गया, अनुमति अंदर नहीं मिली। दुर्वास मुनि, दुर्वास मुनि वो भी वैकुंठ तक पहुंच गए। सभी कथा जानते हैं ना, अम्बरीश महाराज और दुर्वास मुनि की। यहां पर तो दुर्वास मुनि ने वैष्णव अपराध किया। तो सोचिए, वैष्णव अपराध विपरीत, आशीर्वाद और अनुमति लेना तो दूर की बात है, वैष्णव अपराध और डर के मारे भागते भागते पहुंचे वैकुंठ धाम, और वहां पर द्वार पर से ही वैकुंठ पति ने कह दिया, जाओ जाओ जाओ, आपका सुदर्शन मेरे पीछे है। तो वैकुंठ पति भगवान श्री विष्णु ने कहा, तो क्या, वो तो उसे पीछे होना ही है, वो तो तुम बचे हुए हो अब तक कि वो तुम्हें काट कर छिंदी छिंदी नहीं कर रहा, वो सुदर्शन तुमने जो अपराध किया है। तो दुर्वास मुनि, उनके अंदर इतनी योग्यता थी कि वो वैकुंठ धाम के द्वार तक पहुंच पाए। सोचिए, वहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है, परंतु अनुमति अंदर नहीं मिली क्योंकि वैष्णव अपराध किया। तो यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु वो सिखा रहे हैं कि यदि वृंदावन धाम में मुझे प्रवेश करना है तो प्रवेश करने से पहले मुझे वैष्णवों की अनुमति और उनका आशीर्वाद। मोर सहाय कर यदि तुम्ही दुई जन, तबे आमी आना देखी श्री वृंदावन। और वृंदावन का अनुभव वो अब अपने पार्षदों को बता रहे हैं कि वो कैसा करना चाहेंगे और वृंदावन का अनुभव कैसे संभव है। तो वो जानते हैं कि वो जब रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के समक्ष जाएंगे ये कहने के लिए कि मैं आपकी अनुमति और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं श्री वृंदावन धाम जाने के हेतु, तो ये लोग कहेंगे कि हम भी आपके साथ चलेंगे या हम सब आपके साथ चलेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पर वो बता रहे हैं कि यदि श्री वृंदावन धाम का वास्तविक अनुभव किसी को लेना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, मैं अकेले जाना चाहूंगा। और इसलिए उन्होंने कहा, रात्रे उठी वन पथे पलान याब, एकाकी आईब कहो संगे ना लईब। वो कहते हैं कि मैं रात में, आधी रात में उठकर वन पथ लेकर अकेले जाऊंगा वृंदावन। पहले बता दिया वो कुछ बोलने से पहले, एकाकी अकेले याईब कहा संगे न लईब, और किसी को मैं नहीं लूंगा, अकेले जाऊंगा। क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से कह रहे थे? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शा रहे थे कि वृंदावन धाम ये बहुत ही गहरा धाम है भगवान का, और श्री वृंदावन धाम में यदि कोई प्रवेश करना चाहता है तो पहले उसे अपना अंतर निरीक्षण करना चाहिए, अकेले में यात्रा के दौरान उसे अपना अंतर निरीक्षण करना चाहिए। और वो निरीक्षण में उसे क्या देखना है अपने अंदर, कि कितने सारे अनर्थ उसके अंदर हैं जिसके वजह से वो श्री वृंदावन धाम जाने के योग्य नहीं। जैसे कि अक्रूर, जब श्री अक्रूर को कंस ने वृंदावन धाम में जाने के लिए भेजा, किसे, कृष्ण बलराम को लाने के लिए, तो श्री अक्रूर की जो यात्रा है, दशम स्कंद में इसका वर्णन है, श्री अक्रूर की जो यात्रा है मथुरा से वृंदावन की जो यात्रा, उसमें श्री अक्रूर अकेले गए और पूरी यात्रा में वो अपना अंतर निरीक्षण कर रहे थे। अकेले वो अंतर निरीक्षण कर रहे थे। सबसे पहली जब यात्रा उनकी शुरू हुई मथुरा से, रथ शुरू हुआ, तो अपने अंदर सोच रहे थे कि क्या मैं योग्य हूं, क्या मेरे अंदर कोई योग्यता है कि मैं कृष्ण बलराम का दर्शन भी कर पाऊंगा श्री वृंदावन धाम में। और वो सोच रहे हैं डर के मारे कि एक तो मैं कंस का पार्षद हूं, और कंस जो कि इन कृष्ण बलराम को मारने हेतु सारे षड्यंत्र रच रहा है, और मैं सहायक बन रहा हूं कंस का इस षड्यंत्र में, क्या ये योग्यता है श्री कृष्ण बलराम का दर्शन करने हेतु? और मैं एक राजनीतिक, क्या योग्यता? अरे बड़े बड़े योगी वो श्री वृंदावन धाम नहीं जा सक रहे, यहां तक कि उद्धव ब्रह्मा जी वो श्री वृंदावन धाम में बाहर ही केवल एक तृण के रूप में हैं। तो यहां पर अंतर निरीक्षण अक्रूर कर रहे हैं अपना, इसलिए श्री वृंदावन धाम की जो यात्रा है उस यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु श्री अक्रूर जी क्या सिखा रहे हैं, एकाकी। एकाकी का अर्थ यह है कि हम यदि भक्तों के समूह में भी जाएं, परंतु जाने से पहले एकाकी, अपने अंदर अंतर निरीक्षण करने के पश्चात ही उस वृंदावन धाम की तरफ हमें कदम बढ़ाना चाहिए। ये श्री चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। और इसलिए वो कहते हैं के यदि संग लैते पाछे उठी धाय, सबारे राखी बायेन केह नाही आए। और इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने अन्य जो संगी हैं उनके विषय में कहूंगा कि उनमें से कोई मुझे नहीं चाहिए, तो हो सकता है ये दोनों तैयार हो जाएं, वो नहीं आएंगे, हम आएंगे। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि तुम दोनों का ड्यूटी क्या है, कि बाकियों को पीछे संभाल कर रखो। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत चतुरता से वो कह रहे हैं कि तुम दोनों पीछे रुककर, सबारे राखीबा, इन सब को पीछे रखकर तुम इन्हें सांत्वना देना जब मैं जाऊंगा यहां से। अर्थात इन दोनों को भी संकेत दे दिया कि तुम दोनों भी यहीं पे रुकना है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयोजन ये है कि आत्मनिरीक्षण हेतु। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु वो जब देखते हैं कि रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो इतने प्रसन्न नहीं दिख रहे, इस प्रस्ताव से वो दोनों इतने प्रसन्न नहीं दिख रहे, तो अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ब्रजधाम में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मैं अपने इन भक्तों को, जैसे चैतन्य महाप्रभु तो अपने आप को एक भक्त मान रहे थे कि मैं जब तक इन्हें प्रसन्न नहीं करूंगा तो ब्रजधाम यात्रा की प्रसन्नता छिपी है वैष्णवों की प्रसन्नता में। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वो आगे इन्हें कहते हैं, प्रसन्न हनाज्ञा दिबा न मानिब दुख तोमा सबार सुखे पथे हबे मोर सुख। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि मुझे सुख रूप मेरी यात्रा करनी है ब्रजधाम की यात्रा, तो प्रसन्न हन आज्ञा, आप लोग प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मन मुटाव मत रखना कुछ अंदर, ऐसे मन को या हृदय को भारी रखते हुए फिर आशीर्वाद मत देना या आज्ञा मत देना, प्रसन्न होकर, प्रसन्न चित्त होकर आशीर्वाद दो, आज्ञा दो, क्योंकि तुम सब के सुख में मेरा सुख छिपा है। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि तुम लोग सब दुखी होकर मुझे कहोगे जाने के लिए, ठीक है अब आप जाना चाहते हैं तो अब क्या हम आपको रोकें, अब जाओ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, प्रसन्नता से। कई बार हम देखते भी हैं कि जब कोई घर से बाहर निकलता है कहीं जाने के लिए तो घर वाले वो थोड़ा हंस कर आकर विदा करते हैं, यदि रोनी सूरत लेकर कोई आए। कई बार लोग कहते हैं अरे जाने से पहले कोई बीच में छींकना मत, कि कोई छींक दे तो यात्रा गई, विफल हो गई। अब तो इसलिए जिसे सर्दी खांसी हो रही हो उसे दूसरे कमरे में भेज दे, तुम वहां छींकते रहना जितना छींकना, जाने से पहले इधर मत छींकना, द्वार पर मत छींकना। तो यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब तक मुझे आप लोग प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा नहीं देंगे तब तक मेरी यात्रा सफल नहीं होगी। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि यदि हमें गोलोक वृंदावन धाम तक पहुंचना है तो हमें भक्तों को प्रसन्न रखना है, और प्रसन्नता पूर्वक, केवल ऐसा नहीं कि हमें भक्तों के संग में किसी न किसी प्रकार से टिके रहना है, भक्तों के संग में उन्हें प्रसन्नता देते हुए हमें उनका संग करना है, संग लेना है। तो यदि भक्तों के संग में कोई एक भी भक्त यदि अप्रसन्न रहे हमसे तो भगवान भगवत धाम के द्वार पर ही पूछ लेंगे, वो एक वैष्णव जिसके प्रति थोड़ा अलग से व्यवहार था आपका, उसे प्रसन्न नहीं किया आपने, तो इतनी दूर पहुंचने के बाद भगवान वापस भेज देंगे, जाओ। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि वैष्णव का संग कितना महत्वपूर्ण है, कि यदि कोई पुजारी वो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा कर रहा है, साक्षात भगवान की पूजा कर रहा है, तो भगवान को भोग चढ़ाने के लिए जब वो थाली लेकर आता है और यदि उस पुजारी के किसी और वैष्णव के साथ ठीक से संग नहीं है, या व्यवहार ठीक नहीं है, या कोई दूसरा वैष्णव अप्रसन्न है, तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में कहते हैं वो थाली को वहीं रखो, इनमें से मैं कुछ नहीं ग्रहण करने वाला। जब तक कि तुम जाकर उस वैष्णव से क्षमा नहीं मांगते, जब तक कि उस वैष्णव को प्रसन्न नहीं करते, तब तक ये मैं ग्रहण नहीं करूंगा। यहां तक आ गया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु देखिए कि जब वो आज्ञा भी मांग रहे हैं तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे। इसलिए जब हम वैष्णव के साथ संग करते हैं तो वो हृदय से होना चाहिए। ये नहीं कि वैष्णव के साथ संग हम औपचारिकता के रूप में करें कि हां मंदिर में आए हैं, इतने सारे वैष्णव घूमते हैं तो उन्हें दंडवत करना जरूरी है, झुकना जरूरी है, नहीं तो कहेंगे कि क्या वैष्णव एटिकेट सिखा तुमने। इसलिए झुकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, मुझे इसमें 3 महीने बाद जब बंबई गया तो जो भी भक्त वो देख रहा था, प्रभु कहां है आप, कहां थे आप, दंडवत। तो 15 मिनट में मैंने 50 दंडवत मार दिए होंगे, अभी तक थोड़ी कमर दुख रही है। तो मैं यही सोच रहा था कि हालांकि एक भक्त ने मुझे कहा कि आप शायद बहुत दंडवत पहले मार चुके होंगे अब तक, उनका कुछ शायद 40वां नंबर कुछ था। वो कहे कि नहीं नहीं आपको मारने की जरूरत नहीं, आप वहीं पर वैसे ही खड़े रहिए, मन में कर लेना, मैं कर लेता हूं। तो मैं वही सोच रहा था कि देखिए कि कई बार ये सारी जो क्रियाएं हैं, किसी दूसरे वैष्णव का आदर करना दंडवत के द्वारा, ये भी एक औपचारिकता बन जाती है। और कई बार औपचारिकता तो दूर की बात है, ये सबसे बड़ी तपस्या हो जाती है। अरे अरे, और कई बार हम देखते हैं कि कोई वैष्णव कई दिनों बाद दिख रहा है तो थोड़ा अलग से दूसरे रास्ते से चले जाते, सामने आएंगे तो दंडवत करना पड़ेगा, ऐसे रास्ते से जाएंगे ताकि वो हमें देख ना पाए, हम उन्हें देख ना पाए, और दूर से ही, और ऐसी स्थिति में ताकि दूर से गाड़ी में बैठकर हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्छा ना, हाँ गाड़ी चलाओ जल्दी जल्दी। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव सदाचार है, वैष्णव सदाचार को इतने गुह्य तरीके से और एकदम सूक्ष्म तरीके से पालन करते हुए हमें सिखा रहे हैं कि कैसे वैष्णवों को प्रसन्न करना है। इसलिए वो कहते हैं कि ब्रजधाम यात्रा, उनकी ब्रजधाम यात्रा की प्रसन्नता छिपी है वैष्णवों की प्रसन्नता में। और भगवान के पार्षद अब देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु इनसे अनुमति मांग रहे हैं तो भगवान के पार्षद वो श्री चैतन्य महाप्रभु के इस भाव को लेकर सोच रहे हैं कि अब इसमें हम कैसे सेवा कर सके चैतन्य महाप्रभु की। तो वो निर्देश दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि आपने पूछा है कि हमारी प्रसन्नता कहां छिपी है, और आप हमें प्रसन्न चित्त तरीके से आपको आज्ञा देने के लिए आप कह रहे हो। तो कहते हैं किंतु आमा दुहार सुन एक निवेदने, तोमार सुखे आमार सुख कहिला आपने। अब दोनों कहते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय कि भगवान आप ही ने कहा है कि आपका सुख छिपा हुआ है हमारे सुख में, तो अब सुनो हमारा सुख क्या है। तो यहां पर ये लग रहा होगा कि भाई ये सेवक हैं या मालिक हैं। कोई मालिक ही कहेगा ना किसी सेवक को कि मेरा सुख किस में छिपा है, जाकर दूध लेकर आओ मेरे लिए, मेरा सुख किसमें छिपा है, मालिश करो मेरी। परंतु यहां पर ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सेवक है वो कहते हैं, हम बताते हैं कि हमारा सुख किसमें छिपा है। सुनिए किसे कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को। परंतु हेतु क्या है, हेतु जानना बहुत आवश्यक है। इसके पीछे हेतु है भगवान का सुख, भगवान की सेवा, ये हेतु है। और इसलिए वो हेतु को बताते हुए उन्होंने ऐसे शब्द कहे। तो यहां पर जो उनका प्रेम हम देख सकते हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि आप एक पार्षद को ले जाओ आपके साथ, किसी एक, हम में से किसी एक को ले जाओ, और वो भी किस लिए, वो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, वो केवल आपके भोजन का प्रबंध करने हेतु, क्योंकि आप अकेले एक सन्यासी, आप जब भ्रमण करते रहोगे तो आप तो भगवान के नाम में भाव विभोर रहोगे, तो भगवान के नाम में आप भाव विभोर रहोगे, कीर्तन में, जप में। तो इन्होंने कहा कि आप पहले एक को ले चलो ताकि जो आपके लिए मधुकरी कर सके, और फिर उन्होंने कहा कि एक और को इसके साथ ले चलो जो आपका कमंडलू और आपका जो संन्यास दंड है उसे उठा सके। तो फिर जब ये प्रस्ताव चैतन्य महाप्रभु के सामने रखा गया तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, वो दक्षिण भारत यात्रा में एक को भेजा था तुम लोगों ने, काल कृष्णदास, और वो भट्टाहारी, वो भट्टाहारी औरतों के पीछे भागने लगा। अरे यहां पर यदि, और मेरा कितना समय गया उसे ढूंढने में, और ये नहीं कि चैतन्य महाप्रभु काल कृष्ण को क्यों ढूंढ रहे थे, ऐसा नहीं कि खुद की सेवा करने के लिए, परंतु उसके उद्धार के लिए कि वो कहां गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पिछली उस यात्रा में उस काल कृष्ण को भेजा था और ये सब कुछ मुझे करना पड़ा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यहां पर ये लोग कह रहे हैं, प्रभु कहे निज संगी कहो न लईबा, एक जने नीले आनेर मने दुख हईबा। वो कह रहे हैं कि एक जन को आप लेकर जाओ, नहीं तो दुख होगा यहां पर। आप हमारा सुख चाहते हैं, आपका सुख हमारे सुख में, हमारा सुख आपके सुख में, और वो कौन सा है, एक संगी को आप लेकर जाओ। तो हाँ, यहां पर हालांकि ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु श्लोक में कहते हैं कि यदि मैं किसी एक संगी को भी ले गया तो बाकी सभी दुखी हो जाएंगे कि उन्हें क्यों नहीं ले गए। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु अन्य जितने सारे उनके पार्षद, उनके भक्त, उन सब के विषय में सोच रहे हैं। इसलिए भगवान जाने से पहले किसी भी भक्त को अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे। कई बार हमें लगता है कि हम जिन भक्तों को देखते हैं, मिलते हैं शारीरिक रूप से, केवल उन्हीं को हम प्रसन्न कर लें तो ठीक रहेगा। यहां पर चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि ऐसे उनके पार्षद जो वहां पर उपस्थित भी नहीं, जब उन्हें समझ में आएगा कि चैतन्य महाप्रभु किसी एक को लेकर गए हैं तो उनको मन में खराब लगेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा, ताकि किसी को ये मन में खराब न लगे कि कोई एक गया मैं नहीं जा पाया। परंतु यहां पर रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं तो फिर सभी दुखी होंगे, आप सभी की प्रसन्नता के लिए सोच रहे हैं, यदि आप एक को नहीं लेकर जाएंगे तो सभी दुखी होंगे। तो ये यहां पर विवाद चल रहा है, और विवाद किसका चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे सेवा नहीं चाहिए, ये लोग कह रहे हैं कि सेवा हम देंगे। हैं? इस भौतिक संसार में विवाद किसके ऊपर चलता है आजकल? मुझे सेवा चाहिए, सेवा मेरी करो। हाँ? लिखते हैं ना, मेड सर्वेंट वांटेड, ड्राइवर वांटेड, कि ये सब कोई चाहिए सेवा करने के लिए। और वो भी ऐसा नहीं कि वो आने के बाद वो भी लिख देता है इतना सैलरी वांटेड। तो इस कलयुग में स्थिति ये है कि सभी लोग अपनी सेवा कराना चाह रहे हैं, और दूसरा वो उसकी सेवा कर रहा है क्योंकि उससे कुछ पाना चाहता है। तो यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में ये क्या बोलते हैं उसको, हुड़ाहुड़ी, ये स्पर्धा चल रही है। और इस स्पर्धा में जीतेंगे कौन, अब कौन जीतेंगे? भगवान जो कि सर्वशक्तिमान है वो, या उनके कुछ एक दो पार्षद? कौन जीतेंगे? पार्षद जीतेंगे, क्योंकि भगवान से ज्यादा शक्तिशाली उनके पार्षद हैं, क्योंकि उनके अंदर भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है, जिसके कारण भगवान भी हार मान लेते हैं। तो फिर भगवान ने अब कहा कि कौन उनका निजी सेवक बन सकता है, या इन दोनों पार्षदों ने कौन भगवान का निजी सेवक बन सकता है, ये भगवान को बताया। भगवान अब कहते हैं, नूतन संगी है बेक स्निग्ध यार मन, ऐछे यबे पाई तबे लई एक जन। कि नूतन संगी होना चाहिए, नया होना चाहिए कोई, जो मुझे ठीक से जानता ना हो तो मुझे परेशान नहीं करेगा। कोई नया व्यक्ति होना चाहिए, और स्निग्ध यार मन, जिसका मन स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध का अर्थ है शांत, जो शांत मन का। ये क्यों बोल रहे हैं? उसे याद कर रहे हैं काल कृष्णदास को, कि उसके जैसा ना विचलित मन वाला नहीं। इसे देखा तो यहां भाग गया, उसे देखा वहां भाग गया। चैतन्य महाप्रभु मानो ये बता रहे हैं कि मेरे साथ यदि वहां पर वो रहेगा वृंदावन में, तो लोई बाजार में यदि देखेगा कि महाप्रभु थोड़ा बाकी बिहारी की लस्सी, थोड़ा ये चाट यहाँ खा लेते हैं, ये यहाँ की टिकिया फेमस है। तो वो विचलित मन वाला नहीं चाहिए मुझे फिर कोई। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मुझे कौन चाहिए? स्निग्ध मन, जिसका मन शांत हो, स्निग्ध हो। ऐचे यबे पाई तबे लई एक, यदि कोई ऐसा है तो कोई ऐसा एक व्यक्ति दे सकते हो जो मेरे साथ आएगा। तो तुरंत सरोज दामोदर गोस्वामी कहते हैं, स्वरूप कहे ए बलभद्र भट्टाचार्य, तो माते सुस्निग्ध बड़ पंडित साधु आर्य। कि यहां पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कह दिया कि केवल स्निग्ध नहीं, सुस्निग्ध। इस श्लोक में देखिए वो कह रहे हैं कि सुनु स्निग्ध है ये एक व्यक्ति, और पंडित भी है और एक साधु भी है और आर्य, और इसका नाम है बलभद्र भट्टाचार्य। कि ये बलभद्र भट्टाचार्य, इनके ये सारे गुण स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं। तो यहां मानो श्री चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो हमें ये संकेत दे रहे हैं कि यदि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु का संगी बनना है ब्रजधाम जाने में, तो कौन बन सकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक बनने के लिए आवश्यक गुण क्या क्या है? यहाँ पर उपस्थित कितने चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक बनना चाहते हैं? अब ये सब देखने के बाद हरि बोल बोलना कि कि हरि बोल तो हमने बोल दिया, परंतु चैतन्य महाप्रभु वो स्वीकार करना चाहिए ना। तो वो स्वीकार कब करेंगे? जब ये सारी योग्यताएं हमारे अंदर होंगी। सबसे पहले शांत मन। शांत मन का अर्थ ये नहीं है कि बस सोते रहो। अक्सर हमें लगता है सब शांति, ओम शांति। कई बार उसमें भी शांति नहीं, खर्रांटों की आवाज ऐसी जोर से निकलती है। तो शांत मन का अर्थ है कि विषय भोग के प्रति कोई आकर्षण न रहे। ये सबसे पहला गुण है, विषय भोग के प्रति कोई आकर्षण न रहे, तब जाकर ये मन शांत रहेगा। जब तक किसी एक विषय भोग के प्रति हमारी आसक्ति है, तब तक ये मन उसी की तरफ ये मन इस व्यक्ति को खींचता रहेगा। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि मन किसी एक विषय वस्तु पर अपना केंद्र लगाता है, केंद्रित होता है, तो जैसे कि हवा नाव को खींच लेती है, वैसे ही ये जो मन है उस विषय वस्तु के प्रति दौड़ता रहता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा कि यदि इस भौतिक संसार के किसी एक वस्तु व्यक्ति के प्रति भी हम आकृष्ट रहें, तो उसे भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और प्रभुपाद बैठे बैठे उदाहरण दे रहे थे, गुलाब जामुन। प्रभुपाद ने कहा गुलाब जामुन, यदि गुलाब जामुन खाने की इच्छा बनी रही, वो भी कौन से गुलाब जामुन खाने की? इस भौतिक संसार के गुलाब जामुन खाने की, घसीटाराम हलवाई के। तो प्रभुपाद ने कहा कि यहां पर फिर से जन्म लेना होगा। हो सकता है कि घसीटाराम हलवाई की दुकान में कोई चूहा बनना पड़ेगा उस गुलाब जामुन को खाने के लिए। और चूहा बनना मतलब फिर से सब 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद यदि जब मनुष्य योनि मिली और उस मनुष्य योनि में फिर से घसीटाराम हलवाई का गुलाब जामुन खा लिया और फिर से मरने से पहले वो गुलाब जामुन की इच्छा रह गई, तो फिर से चूहा, फिर से वो चालू चक्र। तो शांत मन, इसका अर्थ क्या है कि किसी एक विषय वस्तु से भी आकर्षण जब तक हमारा रहेगा, तब तक हम श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक बनने के योग्य नहीं है। आगे प्रामाणिकता। यदि मन भी शांत हो गया तो यहां पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि ये ईमानदार है, ये प्रामाणिक है। प्रामाणिकता का अर्थ क्या है? प्रामाणिकता का अर्थ है जैसे अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सिंसियर, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी। और ईमानदारी या प्रामाणिकता का अर्थ है कि ये नहीं कि मेरे मन में इतने सारी भौतिक इच्छाएं हैं और वही मैं बाहर से भी उन इच्छाओं की पूर्ति कर रहा हूं तो मैं प्रामाणिक हूं। प्रामाणिक इंद्रिय भोगी हो, परंतु यहां पर हमें प्रामाणिक भक्त बनना है। और प्रामाणिक भक्त बनने का अर्थ क्या है कि जो हमने श्रवण किया है, जो हमें बताया गया है, उसे हम अपने मन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने कर्मों में लाएं, उसे कहते हैं प्रामाणिकता, उसे कहते हैं ईमानदारी। ये नहीं कि मन में कुछ और, बाहर कुछ और, इसे प्रामाणिकता नहीं कहते। और सोचिए कि चैतन्य महाप्रभु के साथ जो जा रहा है, क्या चैतन्य महाप्रभु देख नहीं पाएंगे कि इसके मन में क्या चल रहा? यदि उसने लस्सी के विषय में कहा भी नहीं, इच्छा भी कर दी, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत जान जाएंगे, जाओ करो पीते रहो वहां पर लस्सी। हम लस्सी के विरुद्ध नहीं है, परंतु यहां पर हम बता रहे हैं कि ब्रज धाम जाने के लिए ये सारे जो प्रयोजन हैं, ये कितने आवश्यक हैं। तो प्रामाणिकता, ईमानदारी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ये आवश्यक है भगवान के प्रति प्रेम। हालांकि बहुत सरल वाक्य दिखता है ये, भगवान के प्रति प्रेम, हाँ भगवान के प्रति प्रेम है मुझे, ऐसा प्रेम है कि जैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता हूँ मंदिर में, तो मुझे बहुत आनंद होता है। कितने सुंदर दिखते हैं भगवान, कितना अच्छा श्रृंगार आप लोग करते हैं, और इसलिए मुझे अपनी आंखों को देखने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं ये भगवान, इसलिए प्रेम है। परंतु कितने समय तक प्रेम रहता है? 5 मिनट। उसके बाद में फिर ये आंखें ललचाती है और कुछ देखने के लिए, और ये मन कुछ ललचाता है और कुछ सोचने के लिए, ये जीवा ललचाती है और कुछ बोलने के लिए, कान ललचाते हैं और कुछ सुनने के लिए कि प्रभु जी अब ये 5 दिन ये कथा सुनाने वाले हैं। पहला दिन ही मुश्किल जा रहा है इतना, तो ये कान ललचाते हैं कि दूसरे दिन कुछ और सुने। ये पहले दिन गौर कथा, दूसरे दिन घोर कथा, तीसरे दिन घनघोर कथा। तो हमारी स्थिति ऐसी है। तो भगवान के प्रति प्रेम वो कैसा होना चाहिए, भागवत में इसका उदाहरण दिया गया है। हालांकि उसकी चर्चा, उस उदाहरण की चर्चा हम आने वाले जो योग्यताएं हैं उसमें करेंगे। हाँ, ये है शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान का अर्थ है कि वो जो सेवक होगा चैतन्य महाप्रभु का, वो अपनी बुद्धि और शास्त्र ज्ञान को लगाकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा करेगा। कि शास्त्र ज्ञान का एक और अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद वो मूर्ख व्यक्ति नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि जो भक्ति में लगे हैं ये लोग सब भावुक व्यक्ति हैं, है ना, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सेंटिमेंटल। इसलिए कई बार जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी वो कहते हैं कि ये आप लोग जो सब नाच गाना कीर्तन ये सब जो करते हो ना, ये भावुक लोगों के लिए, जो शास्त्र अध्ययन नहीं कर सकते, जो संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते, जो तर्क वितर्क नहीं कर सकते हमारी तरह, इसलिए जब ये सब नहीं करते तो वो लोग ये ढोल मंजीरा लेकर बैठते हैं और हरे कृष्णा हरे राम तो आप लोगों के लिए, भावुक लोगों के लिए। तो आप लोग थोड़ा इसमें भावुकता दिखाकर आपको लगता है कि आपने कुछ आध्यात्म किया, खुश रहो उसमें, ऐसा ज्ञानी सोचते हैं। परंतु यहां पर चैतन्य महाप्रभु ये दर्शा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद या निजी सेवक, वो बहुत सुमेधसा कहा गया है, सबसे ज्यादा मेधा उनके अंदर होती है, बुद्धि उनके अंदर होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब कुछ करने के पश्चात ये जो ज्ञानी हैं, ये ज्ञानी भी ढोल मंजीरा लेकर यही करने वाले हैं, क्योंकि जब तक वो ये नहीं करेंगे तब तक भगवान का प्रपद, प्रपद किसे कहते हैं कि भगवान के पद के जो नाखून का कोना, वो भी नहीं वो जान पाएंगे जब तक कि वो भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे। इसलिए वो शास्त्र का ज्ञान उस बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा वो सेवक करेगा और अंततः आध्यात्मिक चेतना में प्रगट। तो ये जो भगवान के प्रति प्रेम और आध्यात्मिक चेतना, इसका उदाहरण भागवत में दिया गया है कि ऐसा नहीं कि भगवान की चेतना केवल सुबह 10 मिनट या सोने से पहले 5 मिनट या उठते सो 1 मिनट, कि भगवान की चेतना ऐसी नहीं। भगवान की चेतना कैसी होनी चाहिए? निरंतर। निरंतर का अर्थ क्या है? जिसमें कोई अंतर न आए, उसे कहते हैं निरंतर। कि भगवान की चेतना में, उनके प्रेम में कोई अंतर न आए, उसे कहते हैं निरंतर। तो जब तक निरंतर चेतना भगवान में हमारी नहीं लगती, तब तक योग्य नहीं है हम उनके निजी सेवक बनने के। और उदाहरण क्या दिया गया है? उदाहरण दिया है कि जैसे शहद मधु, जो प्रामाणिक असली शहद होगा, उसे यदि आप बोतल से नीचे किसी बर्तन में डालो तो शहद कैसे गिरेगा? निरंतर। देखा है शहद कैसे गिरता है? बिना किसी अंतर के, अनब्रोकन फ्लो जिसे कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया गया है कि जब तक वैसी चेतना नहीं आएगी उस मधु के समान, निरंतर चेतना नहीं होगी मधुसूदन के चरण कमलों पर, तब तक भगवान श्री कृष्ण का पार्षद बनने के योग्य हम नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सारे योग्यताओं को बोलते हुए, हालांकि ये सब योग्यताएं स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, कि ये बलभद्र भट्टाचार्य, ये बलभद्र भट्टाचार्य के अंदर ये सारी योग्यताएं हैं जो कि आपके निजी सेवक में होने चाहिए। शांत मन, प्रामाणिकता, भगवान के प्रति प्रेम, शास्त्र ज्ञान, आध्यात्मिक चेतना में प्रगत। तो इसके आगे फिर चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी से ये सुनने के पश्चात वो राजी हो जाते हैं कि ठीक है, इस बलभद्र भट्टाचार्य को मेरे साथ भेजो। और अब चैतन्य महाप्रभु अब अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं इस अपने एक सेवक को लेकर, जिसकी चर्चा हम करेंगे कल। कि जैसे उन्होंने यात्रा प्रारंभ की तो इस यात्रा में वो जगन्नाथपुरी से वृंदावन गए, झारीखंड के जंगल से गुजरते हुए। तो यहाँ पर वर्णन आने वाला है कि झारीखंड के जंगल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कौन कौन सी लीलाएं की, और बहुत ही रोचक लीलाएं हैं। झारीखंड में कौन कौन से पशुओं का उद्धार श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, इन सब की चर्चा हम हमारी इस वर्ष की गौर कथा में आगे करते रहेंगे। बोलो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, नितारी गौर प्रेमानंदी। तो कल भी शाम को 7:30 बजे हम भजन से प्रारंभ करेंगे हमारी गौर कथा, और बहुत ही सुंदर सुंदर भजन है चैतन्य महाप्रभु के गुणगान हेतु। तो इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग सब ठीक 7:30 बजे कल भी उपस्थित हो जाइए, और उसके पश्चात फिर लीला आगे हम प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। तो अभी कीर्तन होगा और उसके पश्चात सबके लिए भोजन प्रसाद।
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदी।